पृष्ठ संख्या 266। वैसे तो मौलाना हाल ही के समय से ही साहित्य को थोड़ा बहुत समाज की पृष्ठभूमि में देखने का सिलसिला शुरू हो गया था, परंतु 1930 ईस्वी के बाद से जिस प्रकार भारतवर्ष के समस्त जीवन में प्रगतिशीलता के चिन्ह दिखाई देने लगे और साहित्य नए मार्ग पर बढ़ने लगा, उसी प्रकार आलोचना में भी जांच पड़ताल के नए सिद्धांतों से काम लिया जाने लगा। इसमें सबसे अधिक सहायता उनको मार्क्सवाद के अध्ययन से मिली। इस संबंध में सबसे पहला महत्वपूर्ण लेख अख्तर रायपुरी ने 1935 ईस्वी में अदब और जिंदगी के शीर्षक से लिखा। आज उसमें बहुत सी त्रुटियां और बहुत कच्चापन देख पड़ता है। उसके तर्क अशुद्ध और उसके परिणाम गलत हैं, परंतु उस लेख ने एक नया रास्ता अवश्य दिखाया। अख्तर रायपुरी ने और बहुत से लेख लिखे, परंतु धीरे धीरे वह मार्क्सवाद से दूर होते गए। उनकी आलोचनाओं के दो संग्रह अदब और इनकलाब और संगे मील प्रकाशित हो चुके हैं, यद्यपि उनमें सामाजिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण पहले से मौजूद था, परंतु नई और विशेषकर मार्क्सवादी आलोचना का प्रारंभ भारत के नए सामाजिक और आर्थिक जागरण के साथ उस समय हुआ जब प्रगतिशील लेखकों ने अपने संघ की स्थापना की। यह वह समय था जब जनता की राजनीतिक चेतना ने जनतंत्र समाजवाद पर निर्भर स्वतंत्रता की मांग उठाई। सज्जाद जहीर, डॉक्टर अब्दुल अलीम, फैज, सिप्ते हसन, सरदार जाफरी, मुमताज हुसैन इत्यादि ने मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर साहित्य और जीवन के संबंध को स्पष्ट करने की चेष्टा की। आलोचना का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना व्यापक बन गया कि कुछ ऐसे लेखक जो पहले केवल सौंदर्य शास्त्रीय आधार पर साहित्य सृजन की बातें कहते थे, आलोचना के नाम पर अपनी आंतरिक मनोभावनाओं को प्रस्तुत करते थे, इस नई आलोचना पद्धति की ओर चले आए। इनमें फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी और डॉक्टर एजाज हुसैन उल्लेखनीय हैं। फिराक जिस प्रकार कविता में श्रृंगार में डूबी हुई गजलों के घेरे को तोड़कर जीवन की नई चेतना की ओर बढ़े, उसी प्रकार अपनी आलोचना में उन्होंने सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्व देना प्रारंभ किया। पृष्ठ संख्या 267। परंतु यह बात स्पष्ट रूप से देख पड़ती है कि वह आलोचना में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से अपना ना सके। उनकी विचारधारा नवीन होते हुए भी सौंदर्य शास्त्र के नीचे दबी रही। उनके निबंधों के दो संग्रह अंदाजे और हाशिए प्रकाशित हो चुके हैं और दो तीन पुस्तकें उर्दू की इश्किया शायरी और उर्दू गज़ल गोई भी छप चुकी है। इनके अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वह जीवन और साहित्य में एक प्रकार का भावपूर्ण और रचनात्मक संबंध चाहते हैं, लेकिन मार्क्सवादियों की तरह उसे मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते। वास्तव में उनकी रुचि प्रभाववाद और सौंदर्यवाद की ओर है, जिसके लिए वह सामाजिक पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं समझते। मजनू उर्दू साहित्य के बड़े प्रतिभाशाली आलोचकों में हैं। उनका साहित्य का अध्ययन बहुत गहरा है और व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण रखने के नाते साहित्य के बारे में उनकी बातें कभी साधारण और विचारहीन नहीं होती। आरंभ में उन्होंने जो निबंध लिखे वे अधिकतर केवल सौंदर्य और भावनाओं के खोजने की चेष्टा तक सीमित थे और कवि या लेखक की व्यक्तिवादिता पर बहुत जोर दिया था। उनके ये लेख बड़े सुंदर होते थे, साहित्य से आनंद प्राप्त करने में बड़ी सहायता करते थे, किंतु बाद में उन्होंने भी अपना मार्ग बदला और साहित्य को मनुष्य के आर्थिक जीवन में संघर्ष करती हुई आत्मा का प्रतिबिंब समझने लगे। उनके लिखने का ढंग इतना अच्छा है कि वह भी उतने ही रोचक और रचनात्मक होते हैं। एक कमी अलबत्ता कभी-कभी देख पड़ती है कि जब वह केवल सिद्धांतों का विवरण करते हैं तो मार्क्सवाद को पूर्णतया अपनाते हुए जान पड़ते हैं, परंतु जब किसी कवि या लेखक की रचनाओं की आलोचना करते हैं तो उनका पुराना दृष्टिकोण उनके लेखों में प्रवेश कर जाता है। आलोचना के संबंध में उनकी कुछ रचनाओं के नाम यह हैं: तनकीदी, हाशिए, अदब और ज़िंदगी, अफसाना, शेरो गज़ल, दोशो फरदा, नकुशो अफकार, परदेसी के खतूत। डॉक्टर एजाज हुसैन, जन्म 1899, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यक्ष थे और कई पुस्तकें लिख चुके हैं। आरंभ में उन्होंने भी आलोचनात्मक निबंध लिखते समय उसी रीति का पालन किया जो हाली, आज़ाद और शिबली के समय से चली आ रही थी। अंग्रेजी साहित्य की जानकारी के कारण उसकी सहायता से कभी कभी एक प्रकार की नवीनता भी पैदा कर लेते थे, परंतु उन लेखों में किसी प्रकार की सामाजिक चेतना का अनुभव नहीं होता था। प्रगतिशील विचारों से प्रभावित अपने लेखों में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की ओर भी संकेत करने लगे। अब साहित्य उनके लिए भी जीवन संघर्ष का प्रतिबिंब है। 1929 से 1961 ईस्वी तक विश्वविद्यालय से संबंध रहते हुए उन्होंने बड़ी लगन से साहित्य सेवा की, और अब जबकि अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, लिखने पढ़ने में ही लगे हुए हैं। उनकी कई पुस्तकें पृष्ठ संख्या 268, आईने मार्फत, मुख्तसर तारीखे अदब उर्दू, नए अदबी रुझानात, उर्दू अदब आज़ादी के बाद, मजहब और शायरी, और अदब और अदीब प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना उर्दू शायरी का समाजी पस मंजर है, जो अभी हाल में प्रकाशित हुई है। वर्तमान युग के प्रथम श्रेणी के आलोचकों में आले अहमद सरूर भी हैं। वह इस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के, जन्म 1912 ईस्वी, अध्यक्ष हैं। उन्होंने अंग्रेजी उर्दू साहित्य का बड़ा गहरा अध्ययन किया है, आलोचना शास्त्र के सिद्धांतों को गवेषणापूर्ण दृष्टि से देखा है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लिया है। आरंभ से ही उनके लेख संतुलित और गहरे होते हैं। अन्य आलोचकों की भांति वह भी धीरे धीरे प्रगतिशील दृष्टिकोण के निकट आए। उनकी बड़ी विशेषता यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए भी उनकी आलोचना रचनात्मक और साहित्यिक होती है। उनके विचार तर्कपूर्ण होते हैं, परंतु कभी-कभी उनकी शैली में भावुकता झलक उठती है। अंग्रेजी साहित्य का बहुत अच्छा अध्ययन होने के कारण वह अपने लेखों में उससे बहुत काम लेते हैं और पश्चिम और पूर्व के साहित्य को वैज्ञानिक आलोचनात्मक सिद्धांतों से परखने की चेष्टा करते हैं। वह यह बात कभी नहीं भूलते कि हर साहित्य अपनी एक परंपरा रखता है। यदि कोई लेखक उस परंपरा का उल्लंघन इस प्रकार करता है कि उसके मूल तत्व नष्ट हो जाएं, तो वह अपने साहित्य को ऊंचा नहीं उठा सकता। इधर कुछ समय से सरूर के लेखों में प्रयोगवाद को प्रोत्साहित करने, कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों को ही काव्य का विषय समझने और साहित्य को साहित्य मात्र समझने पर बल मिलता है, जिससे मालूम होता है कि उनकी दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। उनकी रचनाओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे तनकीदी इशारे, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है, और अदब और नज़रिया। इसके अतिरिक्त कई पुस्तकें प्रकाशित होने के लिए तैयार हैं। नए लेखकों में मुमताज हुसैन, जन्म 1914 ईस्वी, ने असाधारण प्रगति की है। उनका दृष्टिकोण विशुद्ध मार्क्सवादी है, और कहा जा सकता है कि जितना उन्होंने उससे साहित्य के समझने का प्रयास किया है, उर्दू के किसी दूसरे आलोचक ने नहीं किया। मार्क्सवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि कला के प्रति उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है, परंतु मुमताज हुसैन के लेख पढ़कर उनकी व्यापकता और विस्तृत ज्ञान का अनुभव होता है। उनके लेख पढ़कर ऐसा जान पड़ता है कि जब तक कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और अन्य विद्याओं से भली भांति परिचित ना हो, उसकी आलोचना में महानता नहीं पैदा हो सकती। उनके संबंध में एक बात अवश्य कही जा सकती है कि कभी-कभी उनकी भाषा कठिन और उलझी हुई होती है। अब तक उनकी कई पुस्तकें नकदे हयात, नए गोशे, अदब और शऊर, तनकीदी मसायल और नई कदरें प्रकाशित हुए हैं। तथा अनेक रचनाएं प्रेस में हैं। पृष्ठ संख्या 269। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, जन्म 1909 ईस्वी, बिहार के सुविख्यात और प्रभावशाली आलोचक हैं। उन्होंने यूरोपीय साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करके अपनी पहली पुस्तक उर्दू शायरी पर एक नज़र इस प्रकार लिखी कि परंपरा, वातावरण, सामाजिक चेतना का कहीं नाम ही ना आया। केवल अपने बताए हुए मापदंड से उन्होंने प्राचीन और नवीन सभी साहित्यकारों और कवियों को परखा और सबकी कड़ी आलोचना की। उनका विशेष क्रोध प्रगतिशील साहित्यकारों के प्रति था। इसी आधार पर उन्होंने उर्दू तनकीद पर एक नज़र भी लिखी और पुस्तक इस वाक्य से शुरू कि उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है। जब अपने वर्तमान सिद्धांतों से उर्दू साहित्य की परख में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वह झुंझला कर बार बार यही विचार प्रकट करते हैं कि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वह घाटे में हैं और जो लोग जानते हैं वह केवल नकल करते हैं। कलीमुद्दीन उस व्यवहारिक आलोचना पर बल देते हैं जो कवि की विचारधारा के महत्व को अस्वीकारती है। केवल शब्दों और उनके उचित संबंधों से पैदा होने वाले अर्थ को देखती है। उनकी अन्य पुस्तकें फने दास्तान गोई, सुखन हाय गुप्तनी और अमली तनकीद भी इसी तरह की हैं। कलीमुद्दीन के एक अनुयायी डॉक्टर अहसन फारूकी हैं जो अब पाकिस्तान में हैं। उनके उपन्यासों का उल्लेख हो चुका है, किंतु उन्होंने आलोचक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। वह भी साहित्य के अध्ययन में विचारधारा या सामाजिक दृष्टि को महत्व नहीं देते, केवल कला के कुछ बने बनाए नियमों से साहित्यिक कृतियों को जांचने पर बल देते हैं। उनकी पुस्तकों में उर्दू में तनकीद, फरेब नज़र, उर्दू नावेल की तनकीदी तारीख और नावेल का फन उल्लेखनीय है। यूरोपीय, विशेषकर फ्रांसीसी ह्रासवादियों से प्रभावित लेखकों में हसन अस्करी का बड़ा महत्व है। वह भी पाकिस्तान में है और अब बहुत कम लिखते हैं। उनकी रचनाओं में इंसान और आदमी, सितारा और वादियान विचारशील लेखों के संग्रह समझे जाते हैं। हालांकि उनमें से अधिकतर लेख प्रगतिशीलता, सामाजिक चेतना और मानव प्रेमी की हंसी उड़ाने में लिखे गए हैं। इस युग के अन्य आलोचकों में प्रोफेसर वकार अजीज, डॉक्टर अख्तर औरेनवी, डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी, अख्तर अंसारी, डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी, डॉक्टर मसूद हुसैन, डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम और डॉक्टर इबादत वरेलवी आयु के थोड़े थोड़े अंतर के साथ लगभग एक ही पीढ़ी के गिने जाते हैं। इन सबको मान्यता 1940 से 50 के बीच में मिली, यद्यपि यह सब आज भी लिख रहे हैं। प्रोफेसर वकार अजीम 1909 ईस्वी ने कथा साहित्य पर अनेक विचारणीय पुस्तकें लिखी हैं और बहुत से अनुवाद किए हैं। वह बड़े सहज ढंग से साहित्य का विश्लेषण करते हैं और किसी विशेष दृष्टिकोण को आरोपित नहीं करते। इस समय पाकिस्तान में हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें यह हैं, अफसाना निगारी, हमारे अफसाने, पृष्ठ संख्या 270, हमारी दास्तानी, दास्तान से अफसाने तक, नया अफसाना, फन और फनकार, डॉक्टर अख्तर ओरेनवी का उल्लेख कथाकारों के साथ हो चुका है। उन्होंने आलोचना साहित्य में भी एक विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया है। उनकी विचारधारा समानता, सौंदर्यवाद और प्रभाववाद से प्रेरित होती है, इसलिए सामाजिक चेतना को वह भी महत्व नहीं देते। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में बिहार में उर्दू जवानों, अदब, तनकीदे जदीद, तहकीको तनकीद, कद्रो नज़र और मिनहासो सिराज है। डॉक्टर ओरेनवी इस समय पटना विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी, जन्म 1917 ईस्वी, दिल्ली विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। शोध कार्य तथा आलोचना साहित्य में उच्च मर्यादा प्राप्त कर चुके हैं। वह भी किसी विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं है, किंतु साहित्य की परंपराओं की ओर से आँख नहीं मूंदते। उनके अनेक लेखों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट रूप में महत्व मिलता है। उनकी आलोचनात्मक पुस्तकों में मिर्ज़ा जवाब लखनवी, मीर तकी मीर, हयात और शायरी, क्लासिकी अदब, जोको जुस्तजू उल्लेखनीय है। डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी, जन्म 1913 ईस्वी, लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू के अध्यक्ष हैं। उनकी रुचि अधिकतर शोध कार्य की ओर रहती है, परंतु कुछ आलोचनात्मक लेख भी लिखे हैं जिनमें साहित्यिक ढंग से रचनाओं की परख मिलती है। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में देहली का दबिस्ताने शायरी, अदब क्या है और अदब का मकसद है। अख्तर अंसारी का उल्लेख कथाकारों की चर्चा में किया जा चुका है। वह अलीगढ़ के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रीडर हैं। साहित्यिक विषयों पर उनकी दृष्टि में गहराई नज़र आती है। उनके विचार प्रगतिशील हैं। रचनाओं में इफादी अदब, गज़ल और दरसे गज़ल, मुतालिया बा तनकीद और एक अदबी डायरी उनके गंभीर विचारों का परिचय देती हैं। डॉक्टर मसूद हुसैन खां, जन्म 1919 ईस्वी, वर्तमान में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। उनको काव्य रचना, भाषा विज्ञान, शोध कार्य और आलोचना सभी से रुचि है और इसी कारण से उनकी कृतियों में बड़ी व्यापकता दिखती है। उनकी पुस्तकों में उर्दू जवान की तारीख सबसे प्रसिद्ध है, किंतु आलोचनाओं के दो संग्रह उर्दू जवानों अदब और शेरो जवान भी विचारशील और गंभीर मंतव्यों से ओतप्रोत हैं। पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान के डॉक्टर इबादत बरेलवी ने आलोचना साहित्य में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, किंतु उसकी मूल धारणाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं अपना सके हैं। उनके विचार में साहित्य का सामाजिक जीवन पर आधारित होना अनिवार्य है, किंतु उसे वर्ग संघर्ष का परिणाम मानने में संकोच करते हैं। कभी-कभी लगता है कि वह कई विचारधाराओं के समन्वय से अपने लिए निज की विचारधारा प्रतिपादित कर रहे हैं। डॉक्टर इबादत ने शोध कार्य भी बहुत किए हैं, परंतु उनकी साहित्यिक ख्याति आलोचनात्मक कृतियों के कारणवश ही है। पृष्ठ संख्या 271। उनकी पुस्तकों में उर्दू तनकीद का इर्तेका, तनकीदी जाविये, रवायत और तजरवे, गज़ल और मुतालए गज़ल, जदीद शायरी और शायरी की तनकीद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उर्दू के रीडर हैं और बहुत अच्छे विचारशील लेखक आलोचक माने जाते हैं। वह प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित हैं, परंतु अपनी कृतियों में प्रभाववादी रुचि का संकेत देते हैं। उन्होंने कम लिखा है, किंतु जो भी लिखा है वह उनके गंभीर मंतव्यों और साहित्यिक सुरुचि का पता देते हैं। उनकी रचनाओं में तनकीदे और गालिब महत्वपूर्ण हैं। इसमें संदेह नहीं कि उर्दू के अधिकांश नए आलोचक किसी न किसी रूप में प्रगतिशील विचारों से प्रेरणा लेते रहे हैं या कोई ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं जिससे साहित्य का विकास ऐतिहासिक प्रगति के संबंध में समझा जा सके। परंतु कुछ आलोचक ऐसे भी अवश्य ही हैं जो केवल मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर बल देते हैं। उनका विचार है कि साहित्य को लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब मात्र ही समझना चाहिए और उसकी कृतियों को केवल कला के बने बनाए सिद्धांतों पर परखना चाहिए। ऐसे आलोचकों की चर्चा अंतिम अध्याय में की जाएगी। कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिनको केवल आलोचक नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह साहित्य, कला, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और अन्य विषयों पर अधिकारपूर्ण लेख लिखते रहे हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आदिब हुसैन, प्रोफेसर मुजीब और ख्वाजा गुलामुस सैयद दैन। इन प्रभावशाली लेखकों की प्रत्येक रचना उनके असाधारण ज्ञान, मानव प्रेम और उदार विचारों का पता देती है। केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, वरन भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में उनका एक ऊंचा स्थान है। इनमें से प्रत्येक ने उर्दू गद्य को अपने अनुवादों और रचनाओं से ऊपर उठाया है। डॉक्टर आबिद हुसैन की हिंदुस्तानी कौमियत और कौमी तहजीब और मजामीन आबिद विचारशील और दार्शनिक महत्व रखते हैं। प्रोफेसर मुजीब ने रूसी अदब, दुनिया की कहानी और तारीखें, फलसफे, सियासियात के नाम से बड़ी श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। गुलाब मुसैदैन ने रूहे तहजीब, वसूले तालीम और आंधी में चिराग लिखकर उर्दू के कोश में वृद्धि की है। अंत में लेखक संक्षेप के साथ अपना परिचय भी करा देना चाहता है, क्योंकि बुरे भले उसने भी उर्दू साहित्य और विशेषकर आलोचना की कुछ सेवा की है। मेरा जन्म 1912 ईस्वी में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के एक गांव माहुल में हुआ और मैंने शिक्षा आजमगढ़ और इलाहाबाद में प्राप्त की। 1932 ईस्वी से लगभग लिखना आरंभ किया और कहानी, नाटक, कविताएं और अन्य विषयों पर लेख लिखता रहा, लेकिन विशेष रूप से मैंने आलोचना साहित्य के क्षेत्र में ही कुछ करने की चेष्टा की। साहित्य के संबंध में मेरे विचार इस पुस्तक में भी स्पष्ट हैं। केवल इतना और कहना चाहता हूँ, पृष्ठ संख्या 272, कि मैं मार्क्सवाद को सबसे श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र समझता हूँ और उसी की सहायता से जीवन और साहित्य को समझने का प्रयास करता हूँ। मेरा विचार है कि आलोचना और आत्म आलोचना के मार्ग पर चलकर हम उस सच्चाई को ढूंढने में सफल हो सकते हैं जिससे जीवन के मर्म समझ में आ सकें। मेरा विश्वास है कि साहित्य के समझने में प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मैं इसे मानता हूँ कि कला और साहित्य का आविष्कार व्यक्ति की अनुभूतियों के माध्यम से ही होता है, किंतु उस व्यक्ति की चेतना अपने युग के वातावरण, सामाजिक स्थिति और वर्ग संघर्ष में बंधी होती है। इसलिए आलोचक को इसमें से किसी पक्ष से आंखें नहीं बंद करनी चाहिए और न ही साहित्यिक परंपराओं, भाषिक प्रयोग की सीमाओं और अनेक राजनैतिक, सामाजिक और दार्शनिक प्रभावों को नकार के साहित्य एवं साहित्यकार को समझा जा सकता है। साहित्य का प्रत्येक परिवर्तन प्रयोग और मूल्यांकन की दृष्टि से अर्थपूर्ण बन सकता है। इस समय तक मेरी जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें कुछ यह हैं: तनकीदी जायजे, रवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद, जौके अदब और शऊर, अफकारो मसायल, अक्स और आईने, एतबारे नज़र, साहित्य और समंदर, यात्रा वर्णन, वीराने कहानियाँ, हिंदुस्तानी शिलानियात का खाका, भाषा विज्ञान। अंतिम अध्याय में उर्दू साहित्य के निकटतम व तत्कालिक उन्नति का उल्लेख होगा।